आदि सेना खत्म होगी पहले ही दिन। रावण के नाना थे माल्यवान, उन्होंने समझाया, रावण ने नहीं बात मानी। मेघनाद आया सभा में। देखो इनकी मीटिंग होती थी रात्रि को राक्षसों की, भगवान की मीटिंग होती थी सुबह, ये फर्क है। मेघनाद आकर बोलने लगा, पिताजी कल मेरा कौतुक देखना, इस समय बोलने से क्या होगा। माल्यवान जी यदि नाराज होकर चले गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी लंका के अंदर मेरे जैसे योद्धा बैठे हैं, तब तक आपको किसी प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र को लेकर वाह बेटा, ऐसा ही पुत्र होना चाहिए। प्रातःकाल हुआ और मेघनाद अपनी सेना लेकर कोलाहल करता हुआ युद्ध भूमि के वहां पहुंचा। बंदरों ने पर्वत शिखर डहाए, इधर राक्षसों की तरफ से गोला चले, तो उस समय में ऐसा लगने लगा जैसे कोई प्रलय के काले काले बादल आ गए हों। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, मरकट विकट भट जुटत कटतन लटत तन जर जर भय। जैसा प्रसंग वैसे ही शब्दों की बनावट। तो ये बंदर बड़े विकट और उधर राक्षस भी बड़े अच्छे सुभट, ये आपस में जुटते हैं। मरकट विकट भट जुटत कटतन लटत तन जर जर भय। कोई किसी से मरता नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। ऐसे दोनों सेना आपस में खूब बढ़िया आराम जो है युद्ध कर रही है। इधर मेघनाद ने सुना कि बंदर लोग इस समय हमारे राक्षसों पर भारी पड़ रहे हैं, घेर रहे हैं, तब वो आंख निकालते हुए और आगे बढ़ा और बड़े घमंड में बोलने लगा, कहां है वो कोसलाधीश, कहां है वो धनुर्धारी राम और उसका भाई लक्ष्मण, कौन है वो नल और नील जिन्होंने पुल बनाया है, कहां है वो सुग्रीव जो अपनी बंदरों की सेना लेकर लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है, वो कहां है अंगद बाली का बेटा अंगद जिसने हमारी सभा में पैर रखने का दुस्साहस किया, आओ मेरे सामने, हमारी लंका को जलाने वाला हनुमान कहां जाकर छिप गया, आओ। और यदि ये सब डर गए हो तो भाई के साथ द्रोह करने वाला विभीषण इस सेना में से प्रकट हो, आज सबको मैं मारने वाला हूं, इस प्रकार से मैं चुनौती दे रहा हूं, कहां छिप गए तुम लोग। ऐसा कहकर के वो बाण पर बाण मारने लगा। सर समूह सो छाड़े लगा, वो खूब बाण मारने लगा। उन बाणों से बंदर लोग बिचारे घबरा गए, उसके सामने गए ही नहीं, तो बाण का तांता लगा दिया उसने। जैसे कोई बरसात होती हो तो आप कितनी बूंदों से बचोगे बताओ, यूं यूं बूंद पड़ती रहती है, कहां तक बचेंगे। ऐसे ही वो बाणों की वर्षा सी हो रही, किधर जाएं क्या करें। तो बंदर है, रीछ है, भालू है, वे सब युद्ध की इच्छा वगैरह भूल भाल करके इधर उधर छिपने के लिए कर रहे हैं। सबको अपने प्राण प्यारे लगे। वो बंदर जब भागने लगे तो एक एक बंदर के 10-10 बाण लगाए, और मेघनाद वहां गंभीर नाद करने लगा। हनुमान जी महाराज ने देखा कि भाई मेघनाद तो आज बहुत ज्यादा पराक्रम दिखा रहा है, एक पर्वत उठाया और क्रोध करके मेघनाद पर डाल दिया। पर मेघनाद तो आज ऐसी युद्ध की भूमि जो है वो स्थिति में था कि आकाश में चला गया, वो उसका रथ तो सब खत्म हो गया, खुद आकाश में चला गया। आकाश में जाकर ललकारा, अच्छा हनुमान, पिछली बार भी तुमने हमारा रथ नष्ट किया था, सारथी को मारा था, हमने तुमको ब्रह्मास्त्र से बांधा, भूल गए, आना हो तो देखो मैं आकाश में आया हूं, यहां पर मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी महाराज यूं लपक करके जाते हैं तो वहां न मिलकर के वहां चला गया वो। ऐसे करते करते वो कई प्रकार की माया दिखाने लगा। तब भगवान ने कौतुक करके एक ऐसा बाण लगाया कि उस बाण के द्वारा उसका जो है सब माया का विस्तार समाप्त हो गया, और भगवान उसको ऐसे ही खिलाने लगे जैसे गरुड़ है वो सपेला को खिलाता, सपेला माने सांप का छोटा सा बच्चा है उसको खिलाता, ऐसे खिलाने लगे। मूर्ख कहीं का वो मेघनाद, जिन भगवान की प्रबल माया के सामने ब्रह्मा जी और शिव जी ये भी छोटे पड़ जाते हैं, और भी दूसरे बड़े छोटे सब वहां माया को समेट लेते हैं, भगवान के सामने क्या माया दिखाए। वो भगवान के सामने जाकर फिर माया दिखाने लगा। अब की बार तो उसने बड़ी विचित्र माया दिखाई, ऊपर से तो अंगारों की बरसा और नीचे जमीन से जल धाराएं निकाल दी। अब बंदर क्या करें बेचारे, नब चढ़ी बरस से विपुल अंगारा और महिते प्रकट होई जल धारा। अब पानी का पानी नीचे तो जल धारा और ऊपर से अंगारे, और नाना प्रकार के पिशाच और पिशाचियों को अपने बाणों से प्रकट कर दिया है, और वो वहां पर युद्ध भूमि में नाचने लगी, मारो काटो बंदरों को खा जाओ, ऐसे विकराल रूप लेकर के आए। फिर खून की, मवाद की, मलमूत्र की, कीचड़ की, हड्डी की, मांस की वर्षा करने लगा। सब जगह ये अंधेरा छा गया, किसी को अपना हाथ से हाथ दिखाई न दे। कपि अकुला ने माया जाने, बिचारे बंदर सब डर गए, और वे डर करके भगवान के पास आए। अब आप लोग भी सोचेंगे कि ये इतनी माया दिखाने क्यों दी भगवान ने। भगवान क्या करते हैं ये बंदर जब यूं डर करके भगवान के पास आकर प्रार्थना करते थे ना कि महाराज अब हमारी रक्षा करो, भगवान को बहुत अच्छा लगता था मेरे पास आवे। इस बात से भगवान बहुत जो है खुश होते थे बंदरों से, और बंदर आके वो सब आकर के राम जी को अपना समझ करके कहने लगे हम तो मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हमको बचाओ। तब भगवान ने एक बाण काटी सब माया, एक बाण से सब माया काट दी, और कृपा दृष्टि कभी भालू भी लोके, और अपने पास भालू बंदर सब बड़े भगवान ने प्यार से देखा उनको। और जब ये माया काट दी तब बंदर एकदम लपक करके उसके पीछे, भगवान अरे ठहरो तो सरी, ठहरो तो सरी, नहीं 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 काय का ठहरना है, अब काय का ठहरना है, भय प्रबल रन रही न रोके। बंदर बड़े प्रबल हो गए, रोके ही नहीं रुके। राम जी महाराज ने कहा मैं जाता, लक्ष्मण जी ने कहा हम जाते हैं। देखो यहां लक्ष्मण जी की शक्ति लगी, क्यों लगी, आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपिसात, राम जी की आज्ञा मांग करके मैं जा रहा हूं साहब। हाँ अच्छी बात है जाओ। अरे विनम्र भाव से प्रणाम करके जाना चाहिए था, वैसे नहीं गए। आयस मांगी राम पै अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध ही बाण सरासन हाथ, क्रुद्ध होकर के चले, भगवान की कृपा लेकर नहीं गए, क्रोध में होकर के गए। इधर रावण ने देखा कि मेघनाथ तो हमारा अकेला ही है, तो और शस्त्र शस्त्र लेकर के बहुत से योद्धाओं को भेजा। बंदरों के पास तो क्या था, पर्वत या नाखून या दांत या वृक्ष, यही इनके पास शस्त्र थे। रावण ने जो सेना भेजी उसके ऊपर बंदर एकदम टूट गए, मुठिकन लातन दातन काटें, कई कपि जयशील मारी पुनि डाटें, ऐसे वहां पर मारो काटो धरो पकड़ो, ऐसे ऐसे वहां पर जोर जोर से शब्द हो रहे थे। बंदर भी क्या करे, राक्षसों का सिर उतार रहे हूं, उतार कर आकाश में फेंके और उसको पढ़ने ही नहीं दे, मैं उसके साथ खेल खेले। और वो राक्षस भी बड़े बलवान है, धावाई जायते रुंड प्रचंडा, सिर कट गया लेकिन उनका धड़ है वो भी दौड़ता है, हाथ फैलाता है, आते वाले बंदरों को जो है नष्ट करते हैं वो। भगवान ने ये देखा कि देखो ये राक्षस लोग भी सिर कटे हुए होकर के भी कितना इनको युद्ध करने का अभ्यास है। भगवान को कभी तो आश्चर्य होता है और कभी भगवान आनंद में भी डूबते हैं। ऐसी वहां पर भयंकर लड़ाई हुई, रुधिर गाढ़ भरी भरी जमे, उन मरने वालों के खून के नाले से चले तो जितने गड्ढे थे ना वो खूब भर गए, और ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आई। वो ऐसे लग रहे थे गड्ढे जैसे कोई अंगारों के ऊपर थोड़ी राख आ गई हो, अंगारों पर राख आ जाए, वैसे अंगारे लाल होते हैं, काले 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 थोड़े से फूंत के वो राख होती है, ऐसे गड्ढों के ऊपर मिट्टी दिखाई दे रही थी। इधर मेघनाद और लक्ष्मण जी का बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था, इन दोनों के युद्ध को सब लोग एकटक होकर के देख रहे थे। वो निशाचर बहुत छल बल कर रहा था, लक्ष्मण जी को भी बड़ा भयंकर क्रोध आया, सारथी रथ सबको उन्होंने तोड़ दिया, जो भी शस्त्र उठाए वो शस्त्र को धनुष पर रखने से पहले ही वो तोड़ देता था लक्ष्मण जी। मेघनाद के तो केवल प्राण बाकी थे, मेघनाद ने देखा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने पर भयंकर संकट मान करके उसने लक्ष्मण जी के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी के छाती में लगी, चक्कर खाकर मूर्छित होकर लक्ष्मण जी गिर गए। मेघनाद ने देखा कि सीता तो वहां है ही, अब लक्ष्मण को मैं उठा के लंका में ले जाऊं और ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा, क्योंकि फिर राम लक्ष्मण के चले जाने के बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो वो दौड़ करके लपक करके लक्ष्मण जी को उठाने लगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसिया। एक मेघनाद नहीं, मेघनाद जैसे जैसे सौ सौ करोड़ योद्धा आए उठाने के लिए, सौ करोड़ अरब, लेकिन मेघनाद उठे नहीं। कैसे उठे? वो शेष अवतार है जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपने फण के ऊपर धारण कर रखा है, ऐसे शेष नाग को, ऐसे लक्ष्मण जी को ये कैसे उठा सकते हैं? इस प्रकार से क्रोध देखो पार्वती, जिनका क्रोध 14 भवन को जला सकता है, उनके आज ये वीर घातनी शक्ति लगी है। ये क्या है? ये एक भगवान का कौतूहल है, ये भगवान की लीला है। इस लीला को वही समझ सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। सायंकाल का समय हुआ, सब सेना के योद्धा लोग अपनी अपनी जगह पर आए। भगवान ने कहा हो, लक्ष्मण कहाँ गया भाई? लक्ष्मण नहीं आया, लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है? इतने में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को ले आए और वो लक्ष्मण जी बिल्कुल बेहोश पड़े हुए। अब क्या हो रही? लक्ष्मण तो बेहोश हो गया। जामवन जी ने कहा, लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है। देखो वाल्मीकि रामायण में तो आता है कि भगवान की सेना में ही सुसेन नाम का एक वानर था, वो वैद्य का काम करता था। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ये कहते हैं कि लंका के अंदर सुसेन नाम का एक वैद्य रहता है, उसके वैद्य के वहां गए। हनुमान जी ने जाकर उसको कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि नहीं साहब, मैं लंका का रहने वाला हूं और मैं रावण के यार, रावण मुझे कल न मार देगा, फांसी चढ़ा देगा, मैं तो नहीं जा सकता। तो फिर क्या करें? भाई देखो हम जा नहीं सकते, ठीक कोई बात नहीं, आप घर में ही बैठे रहो। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी के लिए उस घर को ही उठा लिया है। अब तो देखो आप आए हो, आप हमारे साथ नहीं आए, आप तो लाए गए हो, इसलिए आप जो है किसी प्रकार से रावण के कोप भाजन हो ही नहीं सकते हो। तो सुसेन ने कहा कि देखो भाई, आपको हम बहुत जो है दूर एक औषधि है, हिमालय के भी आगे द्रोणाचल पर्वत पर एक औषधि है, वो लेकर के आओ, रात से पहले पहले आओ, तब तो ये जीवित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा अभी जाता हूं। हनुमान जी महाराज ने यहां अभिमान किया, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, अभी जाता हूं। लेकिन एक बात थी, वो राम जी की कृपा को अंदर मानते थे, पर फिर भी थोड़ा अहंकार तो आ ही गया। रावण को पता चला तो रावण कालनेमी के घर गया और उसने कहा, कालनेमी जी आज मेरा बहुत बड़ा काम है, युद्ध में तो मैंने आपको आज तक काम में कभी लिया नहीं, वैसे भी हमने आपसे कभी कोई काम नहीं लिया, लेकिन आज लंका पर आफत आ रही है। क्या हो गया रावण जी, क्या हो गया? बात यह हो गई कि वो लक्ष्मण के लिए हनुमान गया है द्रोणाचल पर्वत पर औषध लाने के लिए, तुम जाकर के उसका मार्ग रोको ना। अरे लंका, अरे लंकेश, भगवान का भजन करो, उसमें आपका हित है, ये मिथ्या झूठी झूठी कल्पना जल्पना में कोई लाभ नहीं है। क्या सुंदर भगवान का श्री विग्रह है, तुम लड़ाई करते हो ना, तो मैं बहुत दूर से बैठे बैठे भगवान का मुखारविंद देखता हूँ, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, कैसा सुंदर उनका रूप है, श्याम सुंदर है वे, उनकी आंखें मोटी मोटी कमल के समान खिली हुई और उनके मुखमंडल पर एक अपार प्रेम का और कृपा का तेज है। रावण उनको, उनका ध्यान करो, अपने हृदय में रखो, और ये तेरा है, ये मेरा है, मैं ये जीत लूंगा और मैं ऐसा कर लूंगा, ये सब छोड़ो। देखो रावण, आप मोह की बहुत बड़ी निद्रा में सो रहे हो, आप जगो। जिन हनुमान जी का रास्ता रोकने का प्रयास बड़े बड़े शक्तियां नहीं कर सकी, समुद्र के ऊपर अबाध रूप से वो आ गया, उसके मार्ग को मैं जाकर रोक दूंगा? और उसके पीछे किसकी कृपा शक्ति काम कर रही, जो कालों का भी काल है, जो किसी काल के द्वारा मरने वाला नहीं है, उसकी कृपा शक्ति उसके साथ है, उसके मार्ग को मैं नहीं रोक सकता। और आपको भी उसके साथ अब प्रेम करना चाहिए, संधि करनी चाहिए। रावण ने कहा, काल नेमी उपदेश लेने के लिए नहीं आया हूं, तो मेरी आज्ञा का पालन कराने के लिए आया हूं, या तो मेरी आज्ञा मान लेना और नहीं तो फिर बाद में तेरी मृत्यु होने वाली है। उसने मन में विचार किया, इससे मरूं, इससे तो अच्छा है मैं राम के दूध से मरूं। अच्छा सर, अभी जाता हूं। ऐसे चल करके वो हनुमान जी महाराज जा रहे थे, वो पहले ही बीच में बड़ा सुंदर मार्ग आश्रम बनाया, मार्ग पर ही बहुत सुंदर जो है आश्रम बनाया, और एक संत के वेश में बैठ गया। हनुमान जी महाराज जा रहे थे, जो ही हनुमान जी महाराज जा रहे उनको प्यास लगी आई, उन्होंने देखा कि भाई बड़ा सुंदर आश्रम है, आश्रम तो संतों के ही होते हैं, और वो वहां ध्यान लगाए बैठा था। ये बगुला ध्यान था उसका, बगुला होता है यूं आंख बंद करके तो बैठता है, थोड़ी सी आंख खोले रखता है, जो ही मछली आती है खा जाता है, ऐसे इसको बगुला ध्यान बोलते हैं। मन में तो और ही बात हो और ऊपर से ध्यान की मुद्रा हो। तो हनुमान जी महाराज वहां गए, उन्होंने तो उसको सच्चा संति समझा और काल नेमी के जाकर चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, वो बस हो जय सीताराम 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 कर रहा था। कौन हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम पवन पुत्र हनुमान हो, हम यहीं से देख रहे हैं। अच्छा, मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लक्ष्मण की एक शक्ति लगी है, कोई चिंता की बात नहीं है, लक्ष्मण जीवित हो जाएगा, राम और रावण के युद्ध में रावण मारा जाएगा, राम जीतेगा, हम ज्ञान की दृष्टि से पहले ही आपको बात बता देते हैं, और आप लक्ष्मण की औषधि के लिए जा रहे हो, क्यों जाओ, लक्ष्मण तो जीवित हो गया, आप क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जी जीवित हो गए? हाँ हाँ, वो जीवित हो गया, आप तो आराम करो, बाद में चले जाना। तो मैं ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा मुझे जल पिला दो, प्यास लगी आई। तो एक कमंडल दिया, ये कमंडल का इतना सा जल है, ये जल मेरे काम का नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तड़ाव है तड़ाव, वहां जाया हो, नहाया हो, धोया हो, जल पिया हो, फिर उसके बाद मैं तुमको इतने बढ़िया मंत्र दूंगा और ज्ञान दूंगा मैं तुमको। हनुमान जी महाराज उसके चक्कर में आ गए, बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्यों आ गए भाई? क्यों, क्या आ गए? हनुमान जी में बड़ा भगवान के प्रति प्रेम था ना, भक्ति थी, उन्होंने देखा कि ये भी भक्ति होगा। भगत की दृष्टि प्रारंभ में किसी प्रकार से दोष पर जाती नहीं है, ये बताने के लिए प्रसंग है। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है वो किसी पर अविश्वास करता ही नहीं है, इसलिए हनुमान जी महाराज बिचारे उसमें फंस गए। और वो तालाब के अंदर गए और वहां पर एक मगरमच्छी आई, वो मगरमच्छी आई हनुमान जी का वहां, अब देखो हनुमान जी का तो चरण रखना हुआ और वो मगरमच्छी का उसके नीचे दबना हुआ, वो अकुलाई और उसी समय में दिव्य शरीर से आकाश में चली गई। कहने लगा, ए पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरा शाप मिट गया, मुझे एक मुनि ने शाप दिया था, आज समाप्त हो गया। देखो जिसको तुम संत समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो, ये घोर निशाचर है, मेरी बात पर विश्वास करो, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। इतना कहकर के वो तो अप्सरा चली गई। हनुमान जी अच्छा इसीलिए कह रहा है कि हम जान गए कि लक्ष्मण जी तो जीवित हो गए। अच्छा अच्छा हनुमान जी महाराज आए और कहने लगे हे मुनि आप हमको मंत्र देना चाहते हो, हमको आप ज्ञान देना चाहते हो, तो पहले हम आपको गुरु दक्षिणा भेंट करेंगे। गुरु दक्षिणा के बिना तो ये ज्ञान लगेगा नहीं। तो कहा कि हाँ देंगे साहब, हाँ लाओ लाओ क्या है, तो अभी देते हैं गुरु दक्षिणा। अपनी पूंछ को खूब बढ़ाई, बढ़ा करके और लपेट लिया उसको, लपेट करके खूब घुमाया, सिर लंगूर लपेट पछारा निज तनु प्रकट सी मरती बारा, उसको नीचे पटका पटका अपने राक्षस शरीर में आया। मरते मरते कहने राम 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 राम। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्यों कि एक प्राणी मरते मरते भगवान का नाम ले लिया। सुनी मन हरस चले वो हनुमान। हनुमान जी को तो यहां दुख होना चाहिए, अरे इतना समय मैंने व्यर्थ लगा दी। पर संत होते हैं वो दूसरे के भगवान के भजन में लगे हुए देखने पर खुद खुद प्रसन्न हो जाते हैं, ये देखो भगवान में लगा हुआ है। अब हनुमान जी महाराज गए, उनको कोई वो पर्वत तो दिखी आया पर औषधि दिखी नहीं, तो देखे अब क्या करें, पूरा ही पर्वत उठा लिया। बड़े वेग से जा रहे थे, अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे। भरत जी ने बाण लगाया। भरत जी का यहां बाण लगने का अर्थ क्या है, वो देखो भरत जी का ही बाण लगा। भरत जी रात्रि को जगते थे, अयोध्या की रक्षा करते थे। कहने में तो भरत जी महाराज नंदी गांव की गुफा में, नंदी ग्राम में एक गुफा में रहते थे। तो अब क्या हुआ कि रात्रि में पूरी सजगता के साथ, भगवान की राजधानी है तो ये क्यों लगा ये बाण? बाण इसलिए लगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित थे ना, लक्ष्मण जी ने भरत जी पर कितना संदेह किया था, इस कारण से इतनी देरी लक्ष्मण जी के पास दवाई के पहुंचने में लग गई भरत जी के बाण से। तो भरत जी ने जब बाण मारा तो हनुमान जी महाराज गिर गए। गिर गए तो वो राम राम बोलने लगे, हे रघुनाथ, हे राम ऐसे बोले। तो भरत जी, अरे राम राम बोलने वाला कौन आया? तो वे आए बंदर के पास आए और सब बात कही। तो उस समय में उन्होंने सारी बात समाज से कही, समाज माने संक्षेप में कही। तो क्या बात हुई, सब बात कही। तब जो है, अरे ये बात है इसलिए तुम जा रहे हो? तो ये तो भाई बड़े कष्ट की बात है, देखो मैं तो भगवान के किसी काम में नहीं आया, बिगाड़ और दिया। जन्म लिया तो मेरी माँ ने वरदान मांग लिया, तो ये राम जी के लिए मैं मुश्किल का कारण बना, और अब इस समय राम जी बड़े दुखी हो रहे, तो फिर मैं जो है लक्ष्मण के लिए बड़ा कष्टदायक बन गया। हनुमान जल्दी करो मेरे बाण के ऊपर बैठ करके तुम जाओ। हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि एक तो मेरे हाथ में पर्वत, एक मैं स्वयं भी बड़ा भारी, एक इतने से बाण के ऊपर क्या चढ़ूंगा, मोरे भार चले की नहीं बाना। मन में अभिमान आया, अभिमान आते ही अरे अरे नहीं नहीं, राम जी की कृपा से सब संभव है। इसका अर्थ क्या हुआ, ये प्रसंग क्यों दिया कि मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार से कोई उल्टा पुल्टा विचार आ जाए, अभिमान आ जाए, ममता हो जाए, आसक्ति हो जाए, तो तत्काल भगवान के प्रभाव कृपा पर विचार करना चाहिए, उसी समय नष्ट हो जाता है। जैसे कोई आदमी के शरीर में बुखार आ गया, दवाई ले लो, ऐसे ही ये औषध है। औषध मन में काम क्रोध लोभ मोह ममता अभिमान कोई भी दोष आ जाए, तत्काल भगवान का स्मरण करो। तो राम प्रभाव विचारी बहोरी, अरे राम जी की कृपा से सब संभव है, अभिमान खत्म हो गया हनुमान जी का। और वे हनुमान जी महाराज जो है कहने लगे, अब आपकी कृपा से चला जाऊंगा। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। हनुमान जी महाराज बार बार उनके चरणों में प्रणाम किए कि भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से मैं चला जाऊंगा, आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि वहां हनुमान जी महाराज भरत जी के बाण के ऊपर बैठ करके जाते तो इसमें इसमें देखो भरत जी महाराज का भी शोभा नहीं थी। क्यों शोभा ये नहीं थी कि भरत जी महाराज ने एक बाण ही भेजा, भरत जी को पता चला कि सीता जी को इस प्रकार से हर लिया, वहां इतनी लड़ाई हो रही है और हम अयोध्या में बैठे हैं, एक बाण क्या भेजा है, अपने को तो बहुत बड़ी सेना भेजनी चाहिए थी। इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस समय कोई किसी प्रकार से उनके उनके बाण को स्वीकार नहीं किया। दूसरी बात यह भी है कि भरत जी महाराज भगवान का प्रभाव खूब अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए भी सेना नहीं भेजी कि राम जी के लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं। उधर राम जी महाराज ने हनुमान जी को लंका की तरफ भेजा, हनुमान जी को एक बार अयोध्या की तरफ भेजना चाहिए था कि भैया भरत सेना लेकर के आओ। ये बंदरों से ही सहायता हनुमान जी के माध्यम से क्यों ली, वो इसलिए ली कि हनुमान जी महाराज के लंका में भेजने का कारण यह है कि जिस आदमी को अपना गृहस्थ अपने बल के ऊपर बसाना होता है वो अपने गृहस्थ का निर्वाह खूब अच्छे ढंग से कर सकता है। राम जी महाराज ने विवाह किया है तो इसकी जिम्मेदारी राम जी की है कि सीता को अपने बल पौरुष से प्राप्त करे। क्यों भरत से सेना मंगाए, क्यों अयोध्या से सहायता ले, अपने जो है भुजबल के ऊपर ही अपना निर्वाह करना चाहिए, दूसरे से सहायता नहीं लेनी चाहिए। इधर तो ये बात हुई और हनुमान जी महाराज ने देखा कि ओहो भरत जी का कितना प्रेम है, मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, उधर तो ये बात। और यहां देखो पहली बार तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं उहां राम लक्ष्मण ही निहारी, उधर उधर राम जी महाराज लक्ष्मण जी को लेकर बड़ा विलाप करते हैं। तुलसीदास जी महाराज से कहें कि महाराज आप ये यहां राम क्यों नहीं बोले, वहां क्यों बोले, आप राम जी के साथ नहीं होगा ना, मैं राम जी के साथ नहीं हूं तो अभी कहां हूं, अभी मैं हनुमान जी के साथ हूं, अभी मैं भरत जी की तरफ हूं। क्यों, क्योंकि देखो जहां राम जी महाराज इस प्रकार से रोते हों बिलखते हों उनकी जो है इतनी वेदना हो, मैं तो राम जी को इतना दुखी देख नहीं सकता हूं, इसलिए राम जी महाराज के साथ न रहकर मैं तो भक्तों के साथ रहना पसंद करता हूं। उहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, इतने पीड़ित होकर के राम जी महाराज कहने लगे, सब बंदर सुन रहे हैं, अरे आधी रात हो गई, आधी रात बीत गई, बंदर तो अभी तक आया नहीं, अरे लक्ष्मण क्या हो जाएगा, तुम यदि चले गए तो इस संसार में मेरे दुख का सहभाग कौन बनेगा, सब लोग सुख का साथ देने वाले हैं, तू एक ऐसा मुझे कोमल स्वभाव वाला भाई मिला कि जो दुख में सहायता देने वाला मिला, तुमने मेरे लिए माता पिता का त्याग किया, जंगल के कितने कष्ट सहे, बोलो लक्ष्मण वो प्रेम कहां, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुमने कभी मेरे आंख में आंसू देखे नहीं थे, आज मैं इतना रो रहा हूं विचलित हो रहा हूं फिर भी तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, सच बताए लक्ष्मण यदि हम पहले से ये बात जानते होते तो मैं पिताजी का वो वचन नहीं मानता। ये देखो वो वचन, जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मनतेउ नहीं ओहु, मैं यदि ये पहले से ही जान लेता ना कि मेरा भाई के साथ वियोग होगा तो पिताजी का वो वचन नहीं मानता। तो वो वचन कौन सा, बड़ी छिपी हुई बात है ये, वो वचन माने मैं क्या, वो वचन का अर्थ क्या आप राज्य का त्याग नहीं करते, कि राज्य का त्याग भी करता, भरत जी को राजगद्दी पर नहीं बैठाते कि बैठाता, और क्या वन में नहीं जाते कि वन में जाता, परंतु कौन से वन में जाता, हमको कहा था कि दंडकारण्य में जाना है, दंडकारण्य वाली बात नहीं मानता, देखो वन तो वन ही है, अब मैं किसी भी वन में जाऊं, दंडकारण्य के अंदर ही ये दशा होगी, सीता का हरण होगा और फिर लक्ष्मण ऐसे मारा जाएगा, ऐसा यदि मैं पहले ज्यादा दंडकारण्य का जो है वचन नहीं मानता, पिता वचन मानते हुए नहीं हो, क्या रामचरित मानस में दंडकारण्य का नाम ही नहीं है? दंडकारण्य का नाम नहीं है, कैसे बोलते हो? कि रामचरित मानस बोलता है नाना पुराण निगमागम सम्मतम, मैंने सब जगह की सार बातें ली है, तो जो वचन मैंने नहीं लिखे है वो भी औरों की जगह आया है तो वो भी मान लेना चाहिए, मेरे मैं उनके समर्थन से ही लिख रहा हूं। तो विता पिता वचन मनते नहीं हो। दूसरी बात भगवान बोलते हैं कि देखो लक्ष्मण, इस संसार में आप बेटा भी हो सकता है, स्त्री भी मिल सकती है, धन भी मिल सकता है, भवन परिवार सब मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई नहीं मिल सकता। स्त्री मर जाए तो दूसरा विवाह कर लो भाई, और बेटा मर जाए तो फिर बेटा हो जाए, पैसा यदि चला जाए तो फिर पैसा आ जाए, और परिवार में कोई सदस्य मर जाए तो फिर परिवार हो जाए, लेकिन सहोदर भाई कैसे मिलेगा? पिताजी तो मर गए, सहोदर भाई कैसे मिलेगा? जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी की दशा होती है और मणि के बिना सर्प की दशा होती है, सूंड के बिना हाथी की दशा होती है, ऐसे तुम हमारे मूल्यवान अंग थे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना हमारी दुर्दशा हो रही है। अब लोक शोक सुत तोरा, अब तो मेरे जीवन में सब लोग बड़ा अपयश फैलाएंगे कि देखो नारी है तो प्रिय भाई गंवाई, एक लुगाई के लिए अपने भाई को गंवा दिया इसने, अरे बाबा कोई मेरी निंदा करो तो करो, नारी हानि विशेष क्षति नाही, भले ही करो परंतु तू जीवित हो जाए तो मुझे सब कुछ ठीक लगता है। अब लोग कहते हैं कि राम ने ऐसा क्यों कहा कि निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, अपनी माँ के तुम एक कुमार हो और उसके तुम प्राण आधार हो, तो जी ऐसी बात तो नहीं थी। लक्ष्मण जी तो दो भाई थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, यही तो दो सगे भाई थे, एक माँ जाए भाई तो यही तो थे, तो एक कुमारा क्यों कहा, निज जननी के एक कुमारा? तो ये तो राम जी ने देखो, चाहे राम तो राम ही हो, अब वो राम जी भी यदि दुख के अंदर ऊट पटांग बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं तो इसमें फिर अंतर ही क्या है? भगवान चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान तो सबके लिए बोलते हैं कि सुख दुख में बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए, तो फिर भगवान की कैसे बुद्धि विचलित हो गई? भगवान ने कैसे कह दिया कि तुम अपनी माँ के एक ही बेटा हो? तो कहते हैं इसका अर्थ ये नहीं है जैसा अपने लोग लगाते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि निज जननी के एक कुमारा, निज जननी माने मेरी माँ के मैं एक बेटा हूं, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्रागे है, ये तो सब है ना, आप चाणक्य से अर्थ करते हो, ये तो राम जी के वचनों को सुधारने की चालाकी है। निज जननी के देखो, ये तो लक्ष्मण के लिए कहा जा रहा है कि अपनी माँ के तुम एक कुमार हो, तो इस समय में क्या होगा कि इस समय में ये अर्थ होगा कि निज जननी के एक कुमारा, तुम्हारी माँ के एक बेटा है वो मेरी तरफ आया है, उसके तुम प्राणाधार हो, इसका मतलब एक बेटा हो ना, नहीं तो ये संख्यावाचक शब्द क्यों दिया भगवान ने? संख्यावाचक शब्द दिया ना कि एक कुमार, एक कुमार का मतलब है कि एक यहां है तो इसका मतलब एक से ज्यादा लड़का है, तो निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्राणाधारा, अपनी माँ के तुम एक ऐसे लड़का हो कि जो तुम हमारे प्राण के आधार हो, सौंपे सी मोई तुम्हें गई पानी। और देखो यहां वास्तव में सुमित्रा की बात है ही नहीं, सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को सौंपा ही नहीं था राम जी के, राम जी सुमित्रा के पास गए ही नहीं थे आज्ञा मांगने कि माँ मैं वन में जा रहा हूं, क्यों? सुमित्रा सबसे छोटी थी, सुमित्रा कह देती केकी ने वरदान मांगा, लेकिन केकी से छोटी मैं हूं इसलिए मेरी बात चलेगी, तुमने कौशल्या जी की बात क्यों नहीं मानी कि कौशल्या जी से छोटी केकई है, केकई होने के नाते जो है केकई छोटी होने के नाते अपना वरदान मांगती है ना, उनका आदेश मानते हो, तो केकई से छोटी मैं हूं, मैं आज्ञा देती हूं तुम मत जाओ। इसलिए राम जी सुमित्रा जी के पास नहीं गए, उन्होंने कहा कि माँ मुझे मना कर देगी, मना कर देगी तो मेरी रामलीला ही खत्म हो जाएगी। वन में गए बिना मेरा रामावतार का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, मेरी माँ के एक लड़का हूं, तुम उसके प्राणाधार हो, तुम मर जाओगे तो मैं ही मर जाऊंगा, तो मेरी माँ भी मर जाएगी। सोपे सी मोही तुम्हें गही पानी, और उस माँ ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया, अर्थात कौशल्या जी ने तुम्हें मेरे हाथ में दिया था। कि देखो लक्ष्मण का ध्यान रखना, अब मैं उनको जाके क्या जवाब दूंगा, उठो तो लक्ष्मण उठो तो सही। ऐसे भगवान शोक जो है दूर करने वाले, सारे संसार का शोक दूर करने वाले भगवान ये शोक करते हैं। क्यों? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंकर जी के मुंह से कहलवाते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। भगवान तो अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं, ये कृपा का स्वरूप दिखाने का एक लीला का स्वरूप है। भगवान तो अखंड आनंद में डूबे हुए रहते हैं, उनके यहाँ न कोई शोक होता है और न कोई चिंता होती है। लेकिन भगवान जब ऐसे विरह की लीला करने लगे, प्रभु विलाप सुनिकान विकल भये बानर निकर, जो ही ये प्रलाप सुना बंदरों ने, सारे बंदर रोने लग गए, कोई बंदर ऐसा नहीं था, सब वहां रोने लग गए। इतने में ही आ गए हनुमान, हनुमान जी महाराज भगवान की जय जयकार करते करते वहां आ गए। ऐसे आए जैसे करुणा में वीर रस आता है, सब रो रहे, हनुमान जी आ गए, ओ साहब ये रहा, यू ऐसे करके वीर बड़ी वीरता दिखाई। तो हर्ष राम भेटे हुए हनुमाना, भगवान हर्षित होकर के हनुमान जी से बैठे, अभी तो महाराज अब इलाज ही नहीं हुआ इसका, क्या नहीं अब तो होगा ही, समय पर आ गए ना हनुमान। हर्ष राम भेटे हुए हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, भगवान इतनी कृतज्ञता का बर्ताव करते हैं। इसलिए मनुष्यों को कोई भी अपना भला करता है उसके प्रति भगवान को ये दृश्य याद करके और उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और उस समय में सुषेण बेद ने तत्काल उपाय किया, लक्ष्मण जी बैठ गए और सब बंदर हर्षित होकर के तालियां बजाने लगे।
जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम,
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम,
जय सीताराम 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 जय सीताराम,
जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम,
जय सीताराम 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 जय सीताराम,
राम जय सीताराम 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 जय सीताराम,
सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम,
जय सीताराम 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 जय सीताराम,
जय सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी
वाले की जय
पवन सुत
हनुमान की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्मा
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी
महाराज की जय
भक्तवत्सल भगवान की आनंद कंद भगवान की जय जय जय।